ओम शांति। आज हम सब बाबा के कुछ चरित्र और कुछ यज्ञ की ऐसी बातें सुनेंगे जो थोड़ी दादियों ने सुनाया है पहले के समय, मतलब 90s के पहले। उससे पहले एक बात सुनाना चाहेंगे कि एक बार क्या हुआ कि दिल्ली में मम्मा रुकी हुई थी रजौरी गार्डन में, वहां पे कुछ कन्याएं थी, उनको बॉम्बे जाना था क्योंकि बॉम्बे में बाबा आए हुए थे। तो एक महीने के लिए वो सब बहनें बॉम्बे गईं और बॉम्बे में बाबा के साथ रही, बाबा के साथ खाया पिया खेला, मुरली सुनी, बाबा ने खूब उन्हें वो किया क्योंकि उनके लिए मधुबन से पहले वो बॉम्बे का एक ऐसा टाइम था जब वो साकार बाबा के साथ अंग संग रहे और मम्मा उधर थी दिल्ली में। तो जब वो बहन आई वापस, तो वो चक्रधारी बहन थी, तो जब वो वापस आए तो मम्मा ने उनको बुलाया और पूछा कि आप मुझे सब बताओ क्या हुआ वहां पे। तो कहा उस एक घंटे में मैंने मम्मा को जो बताया और जो मम्मा पूछी, मम्मा का चेहरा, मम्मा की आंखें और मम्मा के जो भाव, तो कहा मैंने ये अनुभव किया जो मैं वहां एक महीने रह करके भी अनुभव नहीं कर पाई, वो मम्मा ने एक घंटे में खाली मेरा अनुभव सुन के वो अनुभव कर लिया। तो कितनी एक वंडरफुल बात लगी कि महत्व साथ में रहने का भी तो है, पर इससे भी ज्यादा महत्व है उसको सुन करके भी उससे ज्यादा अनुभव कर लेना। जैसे भक्ति में गोप गोपिकाओं का गायन है कि वो थे तो कृष्ण के से दूर लेकिन फिर भी कितना नजदीक थे दिल से। तो आज हम सब भी क्या करेंगे, साकार बाबा के उन दिनों में चलेंगे जहां पे हमको भी वैसे ही अनुभव होना चाहिए जैसे मम्मा ने किया था। और उसका आधार एक चीज है, बस प्रेम। किसी से प्रेम होता है तो कितना भी दूर होगा हमें वो नजदीक का ही अनुभव करता है। तो फिर चले सिंध हैदराबाद में खातू बंधन लाइन जशोदा निवास 36 में, बाबा का घर जहां पर सब रहते थे और वो शहर से थोड़ा सा दूर था। और बाबा की जब प्रवेशता नहीं हुई थी तो बाबा को पहले से ये संकल्प था कि एक बोर्डिंग जैसा खोले, लेकिन प्रवेश वो कुछ समय रुक गया था, फिर बाद में बाबा ने वो बोर्डिंग खोला और वहां पे बच्चों की पढ़ाई का वो शुरू हुआ। वैसे तो काफी विरोध भी हुआ लेकिन अभी सिंध में ही बाबा थे। उसके बाद लगभग 1-1.5 साल के बाद बाबा कराची चले गए क्योंकि हम जल्दी से इसको वो करेंगे क्योंकि कई सारी चीजें हैं, तो जो मेन है वो आ जाए, जो सुना हुआ है आपने वो फिर भी सुन सकते हैं। तो कराची में बाबा गए, लगभग 1-1.5 साल वहां पे विरोध भी चला। विरोध माना वारंट आता था किसी ना किसी के नाम का, फिर जो साधु वासवानी था उसका भी विरोध हुआ। हालांकि ये साधु वासवानी, गंगेश्वर, ये सब अच्छे थे पर थोड़ा बहकावे में भी थे क्योंकि उसमें उन लोगों ने पत्थर वगैरह भी चलाए थे जो सब बहनों के रिश्तेदार थे। तो साधु वासवानी फिर वापस चला गया, कहा आपने ये गलती करी है जो पत्थर चलाए, मैं नहीं रुकूंगा फिर यहाँ। फिर तो पुलिस आई, हटाया। लगभग 1-1.5 साल तक सबने खूब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। फिर बाबा ने बोला कि अच्छा बच्चे, अब आपको यहाँ पे तपस्या करनी है। ऑफिशियल रूप से जो तपस्या शुरू हुई वो यहाँ से शुरू होती है। लगभग सबका कोई कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तपस्या के लिए बताते हैं ब्रह्मा बाबा ने पहले पहले कपड़ा लेके आए और वो पहले पहले मम्मा को दिया, एकदम साधारण सा। तो प्रकाशमणि दादी कहती ऐसा कपड़ा था वो जो हमने कभी भी अपने बिस्तरे पे भी नहीं बिछाया होगा, कभी देखा भी नहीं होगा वैसा कोई कपड़ा होता, उसको पहनना भी होता है। और खाने पीने में जो शुरू में बाबा ने सब चीज खिलाया अच्छे से अच्छा, लेकिन उन दिनों बहुत साधारण खाना हो गया था, एकदम हल्का। योग में रहना है, साइलेंस में रहना है। तो यहाँ पे ब्रजेंद्रा दादी और कमल सुंदरी दादी, तो इन ये अपना एक विशेष अनुभव बताती हैं कि कैसे निराकार की प्रवेशता जो है वो प्रोग्राम के अनुसार है। क्योंकि हुआ क्या था कि सबको ये था बुद्धि में कि ये ब्रह्मा बाबा कृष्ण है और हम इसके साथ जो है सत्युग में जाएंगे और कोई वो नहीं। एक बार निराकार बाबा ने इनसे ब्रज इंदिरा दादी से पूछा कि बताओ क्या पुरुषार्थ करते हो, तो कहा क्या पुरुषार्थ करते, कुछ नहीं बस हम सम हमने मोह छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, बाबा के पास आ गए, ये हमारी प्रारब्ध है, अब इसके बाद जाके हम देवता बनेंगे। तो पुरुषार्थ क्या करना, पुरुषार्थ तो हो गया, बस हम अपनी प्रारब्ध भोग रहे हैं। तो कहा अच्छा कोई पुरुषार्थ नहीं। तब बाबा ने बोला कि आज से 3 दिन के बाद, ये संदेश के थ्रू आया था कि 3 दिन के बाद शाम 4 बजे से ऑलमाइटी बाबा इस बहन के तन में प्रवेश करेगा। तो ये बात जो है ब्रह्मा बाबा को बताया गया, ब्रह्मा बाबा ने सारी तैयारी कराएगी। उस समय 5 मकान लिए गए थे जिसमें एक का सबके अलग अलग नाम थे, एक का बाबा भवन था, एक का मम्मा भवन, एक का बेबी भवन, एक का गोप भवन। तो बाबा ने ये भी बता दिया किस जगह पे आएंगे, तो वो सब बताया और सारी तैयारी करी गई। और फिर उसमें बाबा ने बोला वहां पे कोई नहीं रहेगा सिवाय 3 लोगों के, उसमें विश्व किशोर भाऊ, विश्व रतन दादा और ब्रज इंदिरा दादी। ब्रज इंदिरा दादी को बाबा ने बोला था कि वो साथ में ही उस बहन के रहेंगी जब तक बाबा रहेगा तब तक। तो उसके बाद बाबा ने ये भी प्रोग्राम दिया कि इन 3 दिन के अंदर कोई आवाज नहीं होगी, कोई भी कारोबार की आवाज नहीं करेगा और केवल मुरली का आवाज होगा, वो भी सुनाने वाले का। तो ऐसा प्रोग्राम दे करके ब्रह्मा बाबा ने मतलब सारी तैयारी कराई। बहुत उसकी जो 3rd फ्लोर पे जहां था वहां पे सब बैठक के लिए भी बना दिया कि यहाँ पे उसको बिठाएंगे और जैसे होगा तो करेंगे। लेकिन होता क्या था, उससे कुछ समय पहले पे जैसे साकार मुरलियों में सुना होगा कि सहजादी सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस भी आते थे, तो वो भी आते थे। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता था कि आखिर कौन आया है। तो शुरू शुरू में ये ब्रज इंदिरा दादी को बड़ा अच्छा काम सौंपा था कि उनको ये पता करना है कि ये कौन आया है। उसमें हमारी कमल सुंदरी दादी, उनका बहुत अच्छा पार्ट था इस चीज में। वो करीब बताते कि 3-4 साल तक ट्रांस के उसमें वो रहती थी, खाने में बस जरा सा कोई फ्रूट खाया या चम्मच से उनको दूध पिलाया, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं खाने का। फिर सब वो बताते थे कि कौन क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारा नाम जो है वैकुंठ का वो है ब्रज सुंदरी, और वतन का नाम है वो है कमल सुंदरी, और जो साकार का दिया हुआ नाम है वो है देवता। तो ज्यादातर उनको देवता दादी के नाम से, ब्रज सुंदरी। हाँ, तो फिर उसमें अभी वो ब्रह्मा बाबा उनको बोलते थे कि बच्ची तुमको ये पूछना है इसे कब की है, मतलब जो सहजादी आई वो किस टाइम की आई है। तो पूछती थी कि अभी हमें कैसे पता करेंगे, तो वो कहती थी कि हम उनसे पूछते थे कि ये बताओ कि आपको आज क्या पढ़ा, आपने वहां पे क्या समझा। तो बताती थी मैंने लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री, तो वो पूछती थी कितने, तो बताएगी 3। तो अभी 3 बताएगी तो मतलब समझ जाएंगे ये 3rd जो लक्ष्मी नारायण के टाइम की आई हुई है, ये 4th वाले टाइम की आई हुई है। तो ऐसे उनका ये काम बड़ा अच्छा रहता था। जब गुलजार दादी भी वतन में गई तो उनसे भी पूछने के लिए बाबा ने इनको लगाया था, ब्रज इंदिरा दादी को। तो ऐसे वहां पे ये प्रोग्राम रखा गया और 4 बजे वो बहन बैठी, आंखें बंद हो गई उसकी, और 3 ये भाऊ, और बोला था कोई भी ऊपर जाएगा नहीं, दरवाजे बंद कर दिए गए थे। तो जब वो बैठे और उसके बाद आंखें ही बंद थी और उस बहन ने बोला कि ब्रिज बेटी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, देखो जाके कोई है बाहर। तो वो उठी तो देखी एक बहन आके पीछे दरवाजे के पास बैठी, और उसको भी बाद में बोला उन्होंने उठाया कि तुम जाओ ऐसा नहीं करो। फिर एक भाई आके बैठ गया, फिर बाबा ने बोला, तो फिर उसने साकार बाबा को बोला, साकार बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची जाओ उससे बोलो हटे वहां से। तो वो भाई को भी हटाया, उसको बताती है दादी की फीलिंग भी आई कि मेरे को ऐसे क्यों बोला, हम भी बाबा के बच्चे हैं। तो फिर बाबा ने ये भी बोला कि बच्ची अभी भी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, बेबी भवन से बहुत आवाज आ रहा है। तो फिर साकार बाबा ने मम्मा को उधर फोन किया, मम्मा वहां पे थी। फिर मम्मा ने क्या किया, वहां पे आवाज कम करवाया, बोला कि साइलेंस में हो जाओ। तो फिर बाबा के पास बोला, तब बाबा मिले, बात करी, पहले विश्व किशोर भाव से मिले, फिर विश्व रतन दादा से मिले, फिर उसके बाद इनको भेज दिया वापस। उस कमरे में केवल ब्रजेंद्रा दादी और ऑल माइटी। तो उन्होंने बहुत एक बात दादी ने सुनाया बहुत अच्छे कि हमारा, उन्होंने बोला दादी ने कि हमारा ऑपरेशन होने वाला था और जब हम लोग जाने वाले थे विश्व किशोर भाव से तो ब्रह्मा बाबा ने मना कर दिया कि बच्ची बाबा ने मना कर दिया है, ऑपरेशन नहीं करना है। तो वो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा तेरा औषधि खुद बनाएगा, किसी और के पास तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने बोला बस तू गोंद ले आना। तो कहा बाबा ये कोई खाने वाली चीज थोड़ी ना होती है। तो कहा नहीं, जब मैं जाऊंगा तो ये लेके आना। तो फिर उसके बाद काफी देर बात हुई उनकी। दादी ने यहां तक भी बताया कि वो करीब 15 दिन तक दोनों लोग थे और 15 दिन में ना तो उसने नींद करी और ना ब्रजेंद्रा दादी ने नींद करी, दोनों में से किसी ने नींद ही नहीं करी 15 दिन तक। उसके बाद फिर ऑलमाइटी बाबा ने बोला कि चलो यज्ञ माता से मिलना है हमें। तो फिर साकार बाबा को बोला कि बाबा वो बोला है कि यज्ञ माता से मिलना है। तो बाबा ने बोला नहीं मुझे भी मिलना है, बोलो मैं भी पहले मिलूंगा। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं मैं जाता हूँ मिलने, मतलब जो बाबा उस बहन के तन में आए थे। तो फिर वो कहे नहीं मैं जाता हूँ। तो बाबा से मिले, बाबा से दृष्टि दी ली दोनों ने। फिर बाबा, विश्व किशोर भाऊ, ब्रजेंद्रा दादी और वो बहन, ये तीनों कार में बैठकर बेबी भवन के लिए गए। वहां पे मम्मा मिली, मम्मा को पूछा कि मम्मा आप ठीक हो, यज्ञ कैसा चल रहा है, सब कुछ अपनी बात हुई। फिर वहां पे मम्मा ने सब बना रखा था क्योंकि बाबा ने, साकार बाबा ने पहले ही फोन करके बोल दिया था कि ऐसा ऐसा है। तो वहां पे बैठे और मुरली चली। थोड़ी देर बाद साकार बाबा ने छुट्टी ली कि बाबा हम जाएं, तो बाबा ने कहा ठीक है जाओ। तो जब तक मुरली चल रही थी तो मम्मा ने ब्रजेंद्रा दादी को अपने कमरे में बुलाया तो पूछा कल क्या हुआ, मुझे सारा सुनाओ, जितना भी देखा जो भी हुआ। तो सब सुनाया, कहा कौन आया है। ये बात ब्रह्मा बाबा ने भी पूछी कि बेटी कौन आया है, कौन है वो। तो बाबा मुझे तो ऑलमेटी बाबा लग रहा है, सब जानता। तो सारी चीजें ब्रजेंद्रा दादी ने बाबा को भी बताई, मम्मा को भी बताई। और जब मम्मा निकल के हॉल में बाबा के पास आ रही थी तो वो बोला कि देखो यज्ञ माता पूछ रही है कि उसके यज्ञ में कौन आया है। तो वो दोनों की दोनों बताती, मैं तो एकदम चौंक गई कि ऐसे कैसे, मैं तो वहां बैठी और ये, क्योंकि दादी को ये लगा कि कैसे जानी जाननहार है, वहां पे था तो वहां पे भी, बाहर कौन आ रहा है जा रहा है, बेबी भवन में क्या हो रहा है उसे पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग वहां क्या बातें कर रहे हैं वो भी पता चल रहा है। तो फिर बाबा ने बोला कि ब्रज बेटी यज्ञ माता को अच्छे से बताओ कि यज्ञ में कौन आया है आज। तो फिर बाद में मिले बाबा, फिर जब जाने लगे तो ब्रजेंद्रा दादी ने बोला कि मम्मा मेरे को बाबा ने ऐसे ऐसे बोला है गोंद लाने को। तो फिर बाबा ने, मम्मा ने बोला नहीं नहीं मैं भेजती हूँ किसी के थ्रू, तुम लेके जाना। फिर वापस उसी जगह पे जहाँ पे वो आए थे, दोनों के दोनों गए वहां पे, दादी ने गोंद दिया। फिर बाबा ने कहा नहीं मैं खुद इसे बनाऊंगा, बाबा ने उसको किया बनाया। फिर उसके बाद दादी ने बताया मैंने उस चीज का जो भी था उसका कोई भी ऑपरेशन नहीं कराया। यहाँ तक कि बाबा ने बहुत सारी बातें आए थे, कई प्रश्न पूछते थे। जैसे एक प्रश्न दादी ने अपने अनुभव में बताया कि बाबा ने पूछा ये बताओ कि सतयुग में जाएंगे तो वहां पे मेल फीमेल बनेंगे, इसका क्या पुरुषार्थ है, कैसे होगा कि कौन मेल बनेगा फीमेल बनेगा। तो कहा मुझे नहीं पता, ऐसे सीधे बोल दिया। तो फिर कोई और प्रश्न पूछे तो दादी ने तो केवल यही प्रश्न बताया, बाकी ये भी बताया, उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे क्योंकि रात भर दोनों में से कोई सोता नहीं था, ज्ञान की चर्चा होती थी, वो कोई ना कोई प्रश्न, लेन देन, कोई बात, कोई संदेश की बातें होती थी वो होता था। फिर एक दिन बाबा ने एक पत्र लिखा और बोला जब मैं ये चला जाऊंगा तो ये यज्ञ पिता को देना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बाबा मैं पहले दे देती हूँ। तो बोला नहीं जब मैं जाऊंगा तब देना है। तो कहा नहीं बाबा मैं यज्ञ पिता से ऐसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगी, रखूंगी थोड़ी ना छुपा के। तो कहा नहीं दोगी तो मैं फिर फाड़ दूंगा। तो दादी बताती फिर बाबा ने फाड़ दिया और वो पता भी नहीं चला आखिर उसमें क्या लिखा था। तो ऐसे मतलब कई जगह पे जानी जाननहार का पार्ट उस समय चलने लग गया। क्योंकि फिर क्या हुआ कि ये फिर बाबा जब जा रहे थे तो मिस्री द दादी जिनको वो ध्यानी दादी बोलते हैं, तो मिश्री बोलते थे, ब्रह्मा बाबा का दिया हुआ नाम था। तो बोला कि मिश्री तुम अपने भंडारे की ध्यान से संभाल करो, मिश्री ठीक ठाक है यानी, क्योंकि वो फिर बाद में देखा तो साकार बाबा को बताया। साकार बाबा ने बोला नहीं, एक बार फिर से देखो जाके क्या है उसमें, क्यों बोला, बोला है तो कोई बात है। और जब देखा तो उसमें नीचे जितना था वो सब खराब हो रहा था, ऊपर का ठीक ठीक था, नीचे का सारा खराब था। फिर एक और ध्यानी दादी का क्या था, वो ध्यान में भी जाती थी और कराची में जो भी भंडारा होता था वो सारा वो देखती थी कि कुछ क्या करना है। तो एक दिन ध्यान में गई और बाबा ने बोला कि आज, जब ये तपस्या का चलता था वो पूरा प्रोग्राम आता था, कितना खाना है, कितने लोगों को तपस्या में बैठना है, कहाँ बैठना है और किसका किसका नाम आएगा जो तपस्या, सब कुछ बिल्कुल संदेश के थ्रू होता था। तो वो ध्यान में गई और उसने देखा कि बाबा ने बोला है कि आज बाजरे की रोटी और छाछ बनना है। तो बाबा को बोला, बाबा बाजरे की आटा नहीं है, जब आएगा तो लेके पिसाएंगे और फिर बनाएंगे, आज गेहूं का बना। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, जाओ देखो इधर उधर, 8-10 किलो मिल जाएगा। तो फिर देखा नहीं मिला, फिर दोबारा गई, फिर बाबा ने ही बोला कि किसी भाई को लेके जाओ। तब वो साकार बाबा के पास गई तो साकार बाबा ने बोला, अरे बच्ची तुमने किसको मना कर दिया, तुम क्यों दोबारा गई, तुम्हें सही से देखना था। तो फिर बाबा ने कहा नहीं अभी भाइयों को लेके जाओ और सारा स्टोर चेक करो। तो बताते उसमें से आटा वो निकल आया। तो कैसे, मतलब उसको एक एक अपने यज्ञ की चीज का भी बहुत रहता था। फिर ब्रज इंद्रा दादी ने एक चीज और भी बताई थी यही बात की, एक बार और ऐसा हुआ था, बाबा ने बोला 15 दिन तक केवल छाछ और ये बाजरे की रोटी, बस यही, दिन में तीनों टाइम यही चलेगा 15 दिन तक। तो साकार बाबा ने बोला जिसकी हिम्मत है वो खाएंगे सब। तो सबने हाँ कर दिया कि कोई वो नहीं, और कोई उसमें दमे का पेशेंट, कोई कुछ था, और ये भी बोला था दवाई कोई नहीं लेगा किसी भी चीज की, ये भी मना कर दिया था। तो बड़ी हिम्मत करी सबने रखा। तो ब्रज इंद्रा दादी ने एक दिन बाबा से पूछा, संदेशी को भेज करके, कि बाबा से पूछो ये बाजरे का आटा क्यों 15 दिन तक खिला रहे हैं सबको। तो वो संदेशी ने बोला कि बाबा ने बोला वो पड़े पड़े खराब हो रहा है इसलिए खिला रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ दमे का पेशेंट है, ये है वो है, दवाई भी बंद करा दी, लेकिन दादी बताती किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार दादी ने ये भी अपने अनुभव में सुनाया कि बाबा ने जाते समय, जब ये बाबा गया तो इसने जाते समय बोला था कि 5 बजे तुम्हें बहुत दर्द होगा, तुम नहीं, ये बोला केवल कमर अपनी सेकना, सिकाई करना। तो उनको दर्द हुआ काफी, फिर वहां से मम्मा को बुलाया गया, मम्मा आई, मम्मा ने भी देखा और काफी दवा हुआ की, फिर ध्यान नहीं, फिर उन्हें लगा कि जब वो बाबा जा रहा था तो उसने बोला था कि कमर की सिकाई करना, तब वो याद आया, तब उन्होंने किया। बताती 15-20 मिनट बाद मेरा ठीक हो गया। फिर एक दिन संदेश आया कि बच्ची इस दिन को इतने बजे तुम्हें बहुत दर्द होगा और जब होगा तो बाबा को बुला लेना। तो दादी ने बोला कि उस बार तो हुआ था तो मैं 1 घंटे तक दर्द में रही, उसके बाद याद है, इस बार मैंने सोचा था मैं 5 मिनट पहले ही बुला लूंगी। तो कहें कि जैसे ही वो टाइम हुआ मैंने संदेशी को बोला कि तुम बोलना कि ब्रज इंद्रा याद कर रही है। तो उस समय दादी ने बताती पता नहीं क्या हुआ उनको, एकदम से नसों में सिर के बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया, बिस्तर पे लेट गई। तो फिर उसी संदेशी के तन में बाबा आए, फिर बाबा ने कुछ किया, बोले कि थोड़ी देर बाद मेरा सही हो गया। तो यज्ञ में उन दिनों ऐसे तपस्या चलती थी, ये जो ट्रांस के राज थे सारे उस समय खुले गुलजार दादी के थ्रू, और सतयुग का कैसा पार्ट होगा, वहां पे कैसे राजधानी चलेगी, वो भी कमल सुंदरी दादी ने अपने अनुभव में बताया कि कैसे खाने का क्या होगा, पीने का क्या होगा, रहने का कैसे होगा, और लक्ष्मी नारायण का क्या चलेगा। तो ब्रज इंद्रा दादी ने बोला, उन्हीं बाबा से पूछा तो बोला कि 3 बार नहाएंगे, स्नान करेंगे, वहां 3 बार नहाएंगे, ये हम लोग 1 बार नहाते इतना पानी कम होता है। तो ऐसे ऐसे मतलब खूब रमणीक बातें भी होती है। हालांकि जब दादी ब्रज इंद्रा यहाँ पे आई थी तो अपने साथ, क्योंकि वो जब बाबा गया उसको दादी बोलती थी पीहू, तो पीहू ऐसा कह रहा है, तो वो फिर संदेश के थ्रू सारा लिखती थी और लाती थी। तो वो सारा संदेश दादी लेकर के भी साथ में आई थी, फिर वो कहीं इधर उधर चला गया, सारा का सारा वो सिंधी भाषा में था, तो वो हिंदी में तो ज्यादा कोई के यूज का नहीं रहा। फिर उसके बाद तपस्या चली और बाबा ने, साकार बाबा ने बोला था कि आपकी इस तपस्या से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। उसी समय ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये सब हुआ। फिर बाबा कराची से इधर आए, माउंट आबू माना ब्रजकोठी में। ब्रजकोठी भी शायद देखी होगी सभी ने, किसी किसी ने, तो वो पहले पहले वो भी ब्रज शांता दादी जो कि उसके पिताजी और दीदी मनमोहिनी के पिताजी निमित्त थे, लेकिन उन्होंने खर्चा कुछ भी नहीं दिया, बेगरी पार्ट शुरू हो गया और अभी 10 मिनट है तो बेगरी पार्ट शुरू हुआ वहां पर। बेगरी पार्ट का तो बहुत ही कहें कि वो एक परीक्षा भी थी। तो ब्रह्मा बाबा जानकी दादी ने बताया कि बेगरी पार्ट में एक बार क्या हुआ कि दादी बाबा के पास बैठी थी और ब्रज शांता दादी बाबा के पास आई, थोड़ा आंखों में आंसू थे और बाबा को बोला, बाबा मेरे को ना आप गिरवी रख दो, कहीं गिरवी रख दो मुझे। हाँ, तो वो बात साकार बाबा को सुनते ही दादी ने बोला, जानकी दादी बैठी थी, कि बाबा की आंखों में भर आई पूरी आंख। बाबा वहां से उठ के अपने कमरे में चले गए, कोई उत्तर नहीं दिया उसको। फिर दादी ने कहा, मेरे को तो फिर जैसे नींद नहीं पड़ी कि कितना बच्चों का बाबा से प्यार और कितना बाबा का अपने बच्चों से प्यार, कि बाबा को सहन नहीं होता कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। और तो फिर दादी जानकी ने बोला कि फिर मैंने बाबा को बोला, मैं यहाँ बैठी क्या करूंगी, मैं सेवा पे जाऊंगी। तो फिर वो तो सुना होगा कि कैसे दादी अहमदाबाद, अहमदाबाद से बॉम्बे, फिर ऐसे ऐसे गई। तो बेगरी पार्ट में भी सबको बहुत निश्चय था, कहते बाबा ने किसी को भी भूखा नहीं रखा, भले छाछ खाए या चेरी खाए या फल खाए, लेकिन भूखा कोई भी नहीं रहा उसमें। और उस समय भी ऐसा था कि जो भी यज्ञ में आया तो वो सबने मिल बांट के खाया और मम्मा बाबा पीछे खाते थे उस समय। तो एक दिन क्या हुआ कि बॉम्बे का एक ग्रुप आया हुआ था, छोटा ग्रुप था, तो बाबा के साथ चल रहा था। किसी बहन ने दाल मांग ली थोड़ी सी दोबारा, तो उसने बहन जो परोस रही थी उसने हल्के से इशारा कर दिया, बोला कि थोड़ा हिसाब से लेना, तो बाकी दिया उसको दोबारा। तो बाबा ने शायद सुन लिया होगा ब्रह्मा बाबा ने, तो ब्रह्मा बाबा ने बुलाया, का बच्ची उसको क्या बोल रही थी, तो बोला बाबा दाल कम है। तो बाबा बताती है कि वो बाबा वहीं से उठ गया, बाबा ने अपनी थाली से कुछ भी नहीं खाया। तो ये बात जब वो बॉम्बे वालों को पता चली तो उनको बहुत फीलिंग आई कि हमारे यज्ञ में कुछ नहीं है और हमारे बाबा मम्मा ऐसे। तो बताते हैं कि फिर सारी माताओं के पास जितना था, जो था, सबने अपना अपना भर के भेजना शुरू किया यज्ञ में। इसीलिए बाबा ने कई बार अव्यक्त मुरली में बोला है कि माताओं की जो पहले पहले इस यज्ञ में जो धन भी लगा, ब्रह्मा बाबा का लगा, माताओं का लगा, पीछे बाकी अभी वो मुरली भी थी जिसमें बाबा ने बोला था, माताओं की दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। तो गुलजार दादी बताती कि जब हम लखनऊ गए थे तो वहां पे माताएं आती थी, वो हमको सेब देती थी काट के, कहती नहीं बहन जी हम आपको अपने हाथ से खिलाएंगे, इतना प्रेम था। तो दादी कहती थी एक ओर उनका प्रेम था और दूसरी ओर जो हमारे मम्मा बाबा ने हमें इतने साल पाला, अपने हाथों से खिलाया, आज उस यज्ञ में खाने को नहीं, हम उनका सेब कैसे खा लेंगे। वो कहती थी घी लाती थी तो दादी पूछती घी तुम कहाँ से लाई हो, तो माता कहती थी जो सबकी थाली में मैं डालती हूँ ना एक एक चम्मच, जो मेरी थाली में एक चम्मच आता है मैं वो बचाती हूँ और वो लेके आई हूँ। तो दादी कहती थी हम तो बड़ी दुविधा में पड़ जाते थे कि हम उसका स्वीकार करते हैं तो फिर हमारे बाबा मम्मा जो यहाँ बैठे हैं वो फिर कैसे करें। तो इतना प्यार उस समय कि ऐसे बेगरी पार्ट में भी ये यज्ञ जो है साकार बाबा ने, मम्मा ने कितनी तपस्या से, कितने स्नेह से बांध के रखा था, जो एकता कहें उस आधार से ये यज्ञ चल रहा था। और जब बाबा आए, वैसे तो बहुत सारी बातें इसमें, जब बाबा का थोड़ा आगे इधर आके शिफ्ट हुए, पहले तो उधर से ये धौलपुर हाउस, कोटा हाउस बोलते हैं, उधर से फिर ये पोखरण हाउस जो लिया इसको, तो यहाँ पे भी बड़ा अच्छा रहता था, बाबा का पाठ चलता था, निराकार साकार कब आता था कब जाता था कुछ पता नहीं चलता था। तो एक बार बिदार की संतोष बहन, जिनकी ड्यूटी थी कि बाबा से पूछना रहता है, बाबा मुरली में गीत कौन सा बजेगा, और उनने बाबा से पूछा तो बाबा ने बोला बच्ची छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, बजा दो। बाबा वो गीत बजाया और जब बाबा आए हिस्ट्री हॉल में देखा तो उनको देख के बाबा ने बोला क्या बेबी बुद्धि है, मेरे को आए हुए इतना समय हो गया और अभी तक गीत बजा रही, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पे आ जा रहे। तो वो बहन ने बोला मैंने ऐसे देखा, ये बुढ़े बाबा ने अभी अभी मेरे को बोला कमरे में और मैंने अभी बजा दिया, ये क्या हो गया इसको, तो वो तो ऐसे ही बोलती हैं। तो फिर बाद में कहा मैंने फिर अंतरदेशी पे सब जगह मुरली भेजनी होती वो नहीं भेजी, नाश्ता नहीं किया, खाना खाते समय उसे याद नहीं किया कि सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी हिस्ट्री हॉल में, 200 की सभा है, अप्रैल का महीने में सीजन लगा हुआ है। तो बोली दीदी, और उनका कमरा साथ में था, तो फिर दीदी ने बोला कि दीदी ने समझ गई दीदी कि इसकी दिनचर्या आज कुछ अलग टाइप की, रात को सोते समय योग भी नहीं किया, तो बोली कि पहले खुद ही मेरे को बोला कि गीत बजाने को और सबके सामने आके मेरी बेइज्जती कर दी। तो दीदी ने बोला नहीं, वो साकार बाबा था और जो हिस्ट्री हॉल में बोला वो निराकार बाबा था। तो का मतलब वहां कुछ और रहता और अंदर आता कुछ और हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ मोहिनी बहन के साथ भी हुआ था जब वो लखनऊ वाली नई नई आए थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब मम्मा मुरली सुनाती थी तो बाबा क्या करते थे, या तो मम्मा की मुरली सुनते थे पीछे छुप करके, सामने नहीं, बैठ के जीने पे, कराची में भी जीने पे बाबा बैठते थे और ऊपर मुरली चलती थी तो बाबा सुनते थे मम्मा का मुरली। तो या फिर कभी कभी चक्कर लगाते थे बाबा देखने के लिए आखिर ऐसा कौन है जो सोया पड़ा है, कि ज्ञान की देवी मुरली सुना रही और वो सोए पड़े हैं। तो बाबा चक्कर लगाने गए और मोहिनी बहन जी अपने बिस्तरे पे, तो बाबा ने देखा तो बाबा ने पूछा क्या हुआ बच्ची, तो बोले बाबा मेरे को थोड़ी सर्दी लग गई है और थोड़ा थोड़ा बुखार भी है। तो कहा अच्छा बच्ची, तो बाबा ने एक रजाई उठाई उसको उनके ऊपर उड़ा दिया और थोड़ा सा प्यार से हाथ भी फेरा और फिर कहा बच्ची ठीक हो जाएगा, फिर चले गए। फिर दो दिन बाद फीवर उतर गया, उसके बाद वो बाबा के पास जाते गुड मॉर्निंग करते मुरली से पहले, तो जब गए तो बाबा को खांसी आ रही थी काफी। तो मोहिनी बहन ने बोला बाबा आपको तो बड़ी खांसी आ रही है तो आज आप मुरली नहीं चलाएंगे। तो बाबा ने उनकी तरफ देखा, बोला मैं कोई तुम्हारी तरह हूं क्या जो जरा सी सर्दी लगे और रजाई ओढ़ के सो जाऊं। तो ऐसी फीलिंग कि उस समय तो बड़े प्यार से उड़ा के चला गया और अभी ऐसे बोल रहा है। तो फिर उस समय बताते शाम को जाते हैं नक्की लेक, तो बाबा का हाथ नहीं पकड़ा, मम्मा का हाथ पकड़ा, खाते समय भी बाबा के साथ नहीं खाया, मम्मा के साथ खाया। फिर शाम को योग होता है, योग में बैठे तो बताती मोहिनी बहन कि मेरे को बड़ा संकल्प चला कि तुमको बाबा इतना प्यार करता है, इतने प्यार से बुलाता है देव कन्या कह के, और आज जरा सा बोल दिया तुमको गुस्सा आ गया। तो बोला कि नहीं, उसको पता नहीं था क्या, वो खुद ही तो किया था। तो ऐसे ऐसे कह रही थी, मेरे मन में द्वंद्व चलने लग गया। और फिर बाद में गीत बजा वो वाला, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो कह ये भगवान है ना, ये जान जाता है। फिर बाबा ने बुलाया कि देव कन्या को बुलाओ कहाँ है, तो जब वो गए तो पूछा तो बोले कि इसका मतलब क्या था गीत का। तो फिर उन्होंने मतलब तो नहीं बताया, सारी बात सारी बता दी कि बाबा आपने सुबह मेरे को ऐसे बोला, फिर ये हुआ फिर वो हुआ। तो बाबा ने कहा अच्छा जाओ मम्मा को बुला के लाओ। फिर मम्मा को बुलाया, फिर मम्मा को बोला कि मम्मा सब सुनो देव कन्या क्या कह रही है। तो फिर मम्मा को बुलाया, बाबा ने बोला देखो मम्मा अभी जब ये बाबा आए ना उसको आप बोल देना कि ऐसे किसी बीच में ना बोले, उसको जो बोलना है वो सबके सामने बोल दे, कह के वो चला जाता है और फंस मैं जाता हूँ, बच्चे मेरे से नाराज हो जाते हैं। तो फिर उनको क्योंकि छोटी थी और चंचल भी थी काफी और कोई ज्यादा समझ नहीं थी, वो भी बहुत उनका अच्छा अनुभव है कि कैसे यहाँ पे पार्टी आती थी, कुछ भी मना करते थे तो छोटी मोटी कुछ ना कुछ अपनी हरकतें करती रहती थी। यज्ञ में पैसा नहीं लेना है ये पता होता है, पार्टी को छोड़ने भेजा तो उसको बोला कमल का फूल लिया उसी के पैसे से, और फिर दो उसको दिया, बोला कि ये जीवन कमल पुष्प समान बनानी, 1 लाख के बाबा को देना था, 1 मम्मा को देना था, और पहले ही आते ही मम्मा मिल गई और मम्मा को दिया। तो मम्मा ने तुरंत पूछा ये कहाँ से आया, पैसे कहाँ से मिले, तो कहा मम्मा मैंने पैसे नहीं लिए, पैसे तो उन्हीं के थे, ये तो फूल मैंने लिया है। तो मतलब ऐसे चंचलता थी। तो बाबा बहुत प्यार से बच्चों को रखना संभालना सब किया। ठीक, ओम शांति।